मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 13 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वह है रूस की क्रांति, जिसे रूसी क्रांति के नाम से भी आप जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि इस विषय पर आखिर बात की क्यों जा रही है। और मैं आपको बता चुका हूं कि खासकर टॉपिक के सिलेक्शन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए दो चीजें जबरदस्त रूप से लाइट हाउस का काम करती हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप इन दोनों लाइट हाउसेस का इस्तेमाल ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सच बात यह है कि आपको मेरी बात पर विश्वास है भी या नहीं है। इन दो लाइट हाउसेज में दोस्तों, एक लाइट हाउस है आपका सिलेबस और दूसरा लाइट हाउस है आपके अनसॉल्व्ड पेपर। तो आइए सबसे पहले हम रूसी क्रांति के संदर्भ में इन दोनों को कंसल्ट करते हैं और इसके बाद फिर इसे करंट अफेयर्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप यूं कह सकते हैं कि तीसरा लाइट हाउस भी एक होता है और वह तीसरा लाइट हाउस होता है करंट अफेयर्स, यानी कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, अक्सर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उनका करंट अफेयर्स से रिलेशन होता है। ये कहना तो खैर गलत होगा कि हर एक प्रश्न का संबंध करंट अफेयर्स से होता ही होता है, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों की संभावना करंट अफेयर्स के अंतर्गत से ही पूछे जाने की होती है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को जान लें। ये आपके फर्स्ट पेपर का सब्जेक्ट टॉपिक है। फर्स्ट पेपर में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है। और देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में क्या लिखा गया है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व का इतिहास, जिसमें 18वीं शताब्दी से लेकर जो आगे की घटनाएं हैं उसमें कुछ जिक्र किया हुआ है कि घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, दोनों विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, फिर दिया हुआ है रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय जो सीमाएं खींची गई, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, फिर डीकॉलोनाइजेशन कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद का अंत हुआ, फिर दिया हुआ है पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक दर्शन, लाइक यानी कि जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इनके रूप और समाज पर इनका प्रभाव। अब आप इसमें दो चीजें देखिए, जो बिटवीन द लाइन्स की मैं बात कहता हूं फ्रेंड्स, उसे तो आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इसमें सीधे सीधे रूसी क्रांति का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो क्या यह आपके सिलेबस में नहीं है? ऐसा कहना ही अपने आप को धोखा देना होगा। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं बिटवीन द लाइन्स को, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में है। कैसे आपके सिलेबस में है? देखिए, वो ये बात कह रहे हैं कि जो इवेंट्स आपको वर्ल्ड वार के पढ़ने हैं उसमें दिया हुआ है 18वीं शताब्दी के बाद से, इवेंट्स फ्रॉम 18वीं शताब्दी से कह लीजिए, तो 18वीं शताब्दी में पहली सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई थी? फ्रांस की क्रांति। और सच पूछे तो फ्रांस की क्रांति से कुछ साल पहले अमेरिका भी आजाद हो चुका था, तो अमेरिका का भी स्वतंत्रता आंदोलन उसमें शामिल है। अब वहां से लेकर आप यूं कह लीजिए कि आज तक का इतिहास आपको पढ़ना है, विश्व का इतिहास। ये नहीं कि आज तक का इतिहास का मतलब है कि केवल भारत के आजादी तक का इतिहास, आज तक का इतिहास। तो अब उसमें कुछ नाम उन्होंने जरूर दे दिए हैं कि औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए, विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ लीजिए, ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर ही आपको तैयारी करनी है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। समझाने के लिए उन्होंने कुछ बातें लिख दी हैं। फिर इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी के तहत कहा गया है कम्युनिज्म, बेसिकली साम्यवाद क्या है, देखिए, जो साम्यवाद है यह कार्ल मार्क्स की थ्योरी से स्थापित एक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी का तो हम मार्क्सिस्ट मार्क्सवाद कहते हैं, लेकिन मार्क्सवाद को आधार बनाकर के रूस में लेनिन ने और चीन में माओत्सेतुंग ने जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की उसे हम कहते हैं कम्युनिज्म। और उस कम्युनिज्म से ही आगे चल करके भारत जैसे देशों ने सोशलिज्म लिया, समाजवाद लिया। तो कम्युनिज्म में आपको रशिया की क्रांति मिल गई। रशिया की क्रांति जो 1917 में हुई वो कम्युनिज्म की ही स्थापना उसके बाद हुई वहां, लेकिन यहां चीन की भी क्रांति शामिल है। तो इन दोनों पर भी आपको पढ़ना होगा, राइट। तो ये बिटवीन द लाइंस कहलाते हैं। ये तो एक बात हुई मित्रों की कैसे आप सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि यदि आप सिलेबस को ठीक से नहीं समझेंगे तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी भी कभी भी ठीक से नहीं हो सकती। और ज्यादातर स्टूडेंट इसी में गच्चा खाते हैं, इसी में धोखा खा जाते हैं। चलिए अब हम सेकेंड लाइट हाउस के प्रकाश में देखने की कोशिश करते हैं, और वो है हमारे अनसॉल्व्ड पेपर। फ्रेंड्स, आप 2014 का अनसॉल्व्ड पेपर उठाइए, आपका जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट, उसमें आप देखिए, उसमें दो क्वेश्चन एक ही साल में दो क्वेश्चन। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन है, विश्व में घटित कौन सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश विरोधी एंटी कॉलोनियल संघर्ष को प्रेरित किया। इंग्लिश में है, व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड विच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। अब देखिए कि इसमें ढेर सारी घटनाओं की आप चर्चा करेंगे, राइट। उसमें जापान में 1905 में जो युद्ध हुआ था जापान रशिया का, वो भी आ जाएगा, दोनों विश्व युद्ध भी आ जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि इसमें रूस की क्रांति भी आ जाएगी, थोड़ी सी आएगी ही, क्योंकि अब आपको 200 शब्दों में सारे राजनीतिक घटनाएं भी लेनी, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां लेनी है। लेकिन अगर हम उसमें रूस को मिस कर देंगे, रूस की क्रांति को, हमें मालूम नहीं है कि रूस की क्रांति का भी किस तरह से भारत की आजादी पर प्रभाव पड़ा है, हमारे यहां जो एक्टिविटीज हुई हैं उन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएंगे, यानी कि हमारा उत्तर थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहां जो सरदार भगत सिंह वगैरह जिस फिलॉसफी को लेकर के चल रहे थे, जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे हमारे, वो बेसिकली रशियन फिलॉसफी को लेकर चल रहे थे, तो उनका इम्पैक्ट पड़ा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देखिए क्या पूछा जा रहा है, कि लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था, मूल्यांकन कीजिए। अब आप देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें रूस आया, रूस की क्रांति नहीं आई है, रूस आया। रूस की क्रांति लेनिन ने की थी, रूस में क्रांति, और 1921 में रूस की में लेनिन प्रमुख थे, और उन्होंने एक आर्थिक नीति अपनाई, और भारत ने उस आर्थिक नीति को अपनी आजादी के बाद उसे फॉलो किया। और जब आप भारत के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, और हो सकता है कि आपको मालूम भी हो। तो अब आप यह देखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत ये केवल रूस की क्रांति ही नहीं, बल्कि क्रांति के बाद रूस ने जो अपना नवनिर्माण किया है, जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं, उन पर भी प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रूस पर वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है कि आप वहां की आर्थिक नीतियों के बारे में बताइए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी नीतियों से किन तत्वों को भारत ने लिया, या उन लेनिन की जो 1921 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उन पॉलिसी से भारत ने क्या ग्रहण किया, ये प्रश्न है। तो अब आप देखिए कि सिलेबस में भले ही सीधे सीधे रूस की चर्चा नहीं है, लेकिन आपके अनसॉल्व्ड पेपर में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरे सालों के अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर्स उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत इस तरह की चीजें मिलेंगी। जापान पर प्रश्न पूछ लिया गया है, अमेरिका पर प्रश्न पूछ लिया गया है, जिनका उल्लेख आपके सिलेबस में नहीं है। तो मित्रों, जब तक आप सिलेबस को बहुत गहराई से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, मान करके चलिए कि फिर केवल खूब मेहनत करने से और केवल पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी। आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो बिटवीन द लाइंस भी पढ़ सके और समझ सके और सच पूछिए, तो यही गाइडेंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं थर्ड पिलर्स पे आता हूं फ्रेंड्स। तीसरा पिलर्स, क्या इसका कोई करंट अफेयर से रिलेशन है? मेरी समझ से शायद आप लोगों को जानकारी होगी, डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा की थी, हालांकि बहुत ही संक्षिप्त में और सांकेतिक रूप में मैंने इसका जिक्र किया था। मित्रों, जो रूस की क्रांति हुई थी वह सन 1917 में हुई थी और इसकी जो डेट थी, अगर रूस के पुराने कैलेंडर के हिसाब से देखें, क्योंकि ये दोनों तारीखें आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाती हैं, इसीलिए मैं यहां थोड़ा सा सतर्क कर रहा हूं। रूस का जो पुराना कैलेंडर था, जो जार के समय में जारी था, उसके हिसाब से रूस में 25 अक्टूबर 2017 1917 को क्रांति हुई। 2017 मुंह से निकल रहा है क्योंकि अभी चल रहा है वो, 1917 को क्रांति हुई। लेकिन जो नया कैलेंडर है जो पूरी दुनिया में चल रहा था, उसके अनुसार उस दिन 7 नवंबर की तारीख थी। और दुनिया में अब ज्यादातर इतिहासों में जो डेट मिलती है रूसी क्रांति की, वह है 7 नवंबर 1917, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम 13 दिसंबर 2017 में हैं, यानी कि कुछ दिनों पहले रूसी क्रांति के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो स्वाभाविक है कि यदि इतनी बड़ी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो वो काल, वह समय बहुत महत्वपूर्ण हो उठता है। तो हम थोड़ा सा मानकर चल सकते हैं कि रूसी क्रांति पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाता है तो कोई ताज्जुब नहीं, और यदि पूछा जाता है तो उसका कारण यही होगा, क्योंकि रूसी क्रांति के 100 साल पूरे हुए हैं और ये करंट अफेयर से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो मित्रों, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से मैंने रूस की क्रांति पर थोड़ी सी बात करने का निर्णय लिया है, राइट? दोस्तों, मैं एक बात यहां स्पष्ट कर दूं, और वह यह कि आपको लगता होगा कि मैं ये बातें बार बार क्यों दोहराता हूं। इससे पहले आपने जो फूड प्रोसेसिंग पर सुना, उसमें भी मैंने आपको अनसॉल्व पेपर की चर्चा की, बताया, आपका कुछ वक्त लिया, और यहां भी मैं आपका कुछ वक्त ले रहा हूं। मित्रों, सच पूछिए तो वक्त मैं ले नहीं रहा हूं, वक्त का कई गुना सही इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, मुझे तो ऐसा लगता ही है कि सफलता दूर खड़ी आपको दिखाई देगी। दिखाई तो दे रही है, लेकिन शायद आप उसे पकड़ने में असमर्थ रहे। मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव ही नहीं है, हाँ, कठिन जरूर हो जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादातर, मेरी कोशिश होती है कि चूंकि मेरे इस डेली ऑडियो का पर्पज आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है, आपकी क्षमताओं को विकसित करना है, आपके अंदर वो तीसरी आंख पैदा करनी है। और सच पूछे तो जो 15 दिन की क्लासेज होती हैं, उसका तो पर्पज ही सिर्फ यही होता है कि आप सिविल सर्विस के पैटर्न पर पढ़ना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, और उसमें सफलता मिलती भी है। लोग पढ़ना सीख जाते हैं, पहली बार उन्हें लगता है कि अरे बाप रे, किसी विषय को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, किसी विषय को इस तरीके से समझा जा सकता है। इनफैक्ट जब तक आप उस तरह की क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तब तक शायद विश्वास करना मुश्किल होता है कि सच में पढ़ाई इस तरह से भी होती है, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिए वो जरूरी है। तो मित्रों, मैं उतने विस्तार से तो अपने डेली ऑडियो लेक्चर में नहीं जा सकता, क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है, उस तरह का माहौल भी नहीं होता है, और आमने सामने चेहरे भी नहीं दिख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें से जो भी बातें आप तक पहुंचा सकूं, जो आपके लिए उपयोगी हो सके, वो मैं आपको पहुंचाऊं। और यदि जहां तक रूस की क्रांति की बात है, तो वो तो किताबों में लिखा ही हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पढ़ने में वो समझ विकसित न हो जो शायद हम जैसे जब उसे समझाते हैं, बताते हैं, या दूसरे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो जब आपके सामने रखते हैं, तो वो चीजें आपको थोड़े से विस्तार के साथ, गहराई में आपके अंदर उतर जाती हैं। और यही रियल में टीचिंग भी है, या यू कह लीजिए कि लर्निंग भी। तो मित्रों, ये जो रूस की क्रांति है, अब जो भी वक्त बचा है मैं थोड़ी सी उस पर बात करूंगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल भी इसी विषय पर बातें करेंगे क्योंकि मुझे यह विषय इम्पोर्टेंट लग रहा है। फ्रेंड्स, ये जो रूसी क्रांति है ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको रूस की क्रांति के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रहा हूं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लगभग 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति घटित हो गई है ना, ब्रिटेन में सबसे पहले घटित हुई, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद पूरे यूरोप में बहुत तेजी के साथ औद्योगिक क्रांति घटित होने लगी, नए नए आविष्कार आने लगे। और इन औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि इसने उत्पादन के साधनों को बदल दिया। पहले आदमी हाथ से कपड़ा बुनता था, अब मशीन से बुनने लगा। पहले आदमी पैदल चलता था, बैलगाड़ी से चलता था, घोड़ा गाड़ी से चलता था, अब पता लगा कि इंजन गाड़ी आ गई, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई। तो मशीन आने के कारण जो व्यक्ति की जो उत्पादन क्षमता थी, जो उसकी कार्य शक्ति थी, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उत्पादन क्षमता बढ़ गई और यहां तक कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ गई। और चूंकि उत्पादन क्षमता बढ़ गई तो वस्तुओं की कीमतें भी काफी कम हो गई। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि जो उत्पादन पहले घर में या छोटे रूप में होता था, अब वो बड़े रूप में होने लगा, विशाल रूप में होने लगा। और जब उत्पादन विशाल रूप में होने लगा, यानी कि जब कारखाने स्थापित हो गए, तो अब आप देखिए कि उस कारखाने पर किसी का मालिकाना हक है ना, उसका एक मालिक है। और दूसरा वर्ग कौन सा है? काम करने वाले मजदूर वर्ग है, जो वहां काम कर रहे हैं, जो श्रमिक वर्ग है, राइट। अब ये जो श्रमिक वर्ग है वहां काम कर रहा है, उस समय कारखानों की परिस्थितियां बहुत बुरी होती थी, तो आज जैसी स्थितियां नहीं थी कि श्रमिक कल्याण के दुनिया भर के कानून बन गए हैं, तो आपको उन कानूनों का पालन करना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य का, परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। उस समय बहुत बुरी स्थिति थी, 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, अंधेरे में काम कर रहे हैं, ढाए ढाए टन टन खड़ खड़ की आवाज कारखाने में आ रही है, एक साथ मजदूर काम कर रहे हैं तो उन्हें गंदी बस्तियों में वो रह रहे हैं, वहां गंदा पानी बह रहा है, मच्छर भिन भिन आ रहे हैं, तो कारखाने में भी उनके रहने की परिस्थितियां बहुत खराब थी, और जहां वो जाकर के रहते थे रात में वो भी परिस्थितियां बहुत खराब थी। और उनके बदले में उनको वेतन क्या मिलता था? केवल वो जीवित रह सके। और दूसरी तरफ ये जो पूंजी, जो मालिकाना हक जिनके पास था, वो भयानक रूप से कमाई करते थे, बहुत ज्यादा कमाई करते थे। कार्ल मार्क्स ने इसको देखा, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। जब कार्ल मार्क्स ने इसको देखा तो वो चौकन्ने हो गए, बोले ये तो बहुत जबरदस्त रूप से शोषण हो रहा है, और शोषण कौन कर रहा है? शोषण ये पूंजीपति लोग कर रहे हैं, मालिक कर रहे हैं। तो उन्होंने अध्ययन किया, पूरे के पूरे विश्व इतिहास का अध्ययन किया, फैक्ट्रीज और इस तरह के जो उत्पादन के साधन है इसका अध्ययन किया। और इसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने फिर एक फिलॉसफी डेवलप की जो कार्ल मार्क्स के नाम से जानी जाती है। और उस फिलॉसफी के तहत, उस दर्शन के तहत उन्होंने ये बताया कि समाज में किस तरीके से हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक वह वर्ग है जो लगातार एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसका लगातार शोषण होता है, यानी कि एक वर्ग शोषक और दूसरा वर्ग शोषित, और इन दोनों में लगातार स्ट्रगल चलता रहता है, जिसे उन्होंने कहा क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, लगातार वर्ग में संघर्ष होता रहता है। और पूरा का पूरा जो इतिहास है इसी से आगे बढ़ा है, पूरे के पूरे समाज का विकास इसी तरीके से हुआ है। ये उन्होंने फिलॉसफी दी और उन्होंने स्थापित किया कि एक मजदूर सच में अपने श्रम के जरिए जितना उत्पादन करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये पूंजीपति खा जाते हैं, रख लेते हैं। वो तो मजदूरों को केवल उतना ही देते हैं जितने में वो जीवित रह सके, जितना खा करके, क्योंकि अगर मजदूर जीवित नहीं रहेंगे तो फिर इनको मजदूर मिलेंगे कहां से काम करने के लिए, और अगर इनको मजदूर काम करने के लिए नहीं मिलेंगे तो फिर इनकी फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मजदूर जितना उत्पादन कर रहा है, यानी कि मजदूर का जितना हक है, उस हक की तुलना में उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज होने के लिए उन्होंने कहा, नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए ये सिर्फ हथकड़ियां हैं, यानी कि गुलामी है, तुम गुलामों की तरह रह रहे हो, तो तुम हार भी जाओगे तो क्या खोगे? सिर्फ इन हथकड़ियों को, इन गुलामियों को ही खोगे, जबकि पाने के लिए पूरा विश्व है, और अगर जीत जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो खोगे भी क्या? इस नारे ने जबरदस्त रूप से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और इस फिलॉसफी पर लगातार बातें होने लगी। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी दोस्तों बहुत आगे की फिलॉसफी है, बहुत से उसके सेगमेंट हैं, पार्ट हैं, जिनकी चर्चा मैं यहां 15 दिन की क्लासेस में करता हूं। मेरे सुनने वालों में मेरे जो फर्स्ट से लेकर के सेवंथ बैच तक के स्टूडेंट होंगे उन्हें ये सारी बातें अभी स्मृति में आ जा रही होंगी, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं बहुत विस्तार से उनको बताता हूं। यह एक ऐसा टॉपिक है, खासकर मार्क्सवाद के सिद्धांत को समझना, जिसके माध्यम से आप इतिहास को समझते हैं, समाज को समझते हैं, कला साहित्य संस्कृति को समझते हैं। कार्ल मार्क्स अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। तो मित्रों, कुछ लोगों ने सोचा कि एक ही मात्र उपाय है। उपाय क्या है? कि सत्ता पर अधिकार कर लिया जाए। अगर सत्ता हमारी हो जाएगी तो बात खत्म हो गई, फिर शोषक भी कौन रहेगा, कौन हमारा शोषण करेगा? अगर मजदूरों की ही सत्ता हो गई तो सीधी सी बात है कि फिर हम अपना शासन खुद चलाएंगे, कोई हमारा शोषण करने वाला नहीं रहेगा। और इसी सिद्धांत को आधार बना करके लेनिन ने रशिया में क्रांति की, जो 7 नवंबर 1917 को सफल हुई। इसे ही कहते हैं मित्रों रूस की क्रांति। और इस क्रांति के साथ ही रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। तो मित्रों, चूंकि अब इतना वक्त नहीं है कि इस पर आगे बात की जा सके, इसके सेकेंड पार्ट के रूप में और अच्छी तरह से समझने के लिए कल हम लोग इस पर फिर बातें करेंगे, तो मेरी समझ से शायद आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। इनकी जो बहुत दूसरी जो बातें हैं मित्रों, जानबूझ करके उनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको रूसी क्रांति की पूरी जानकारी देना नहीं है, केवल उसकी ऐसी पृष्ठभूमि इस तरीके से बता देना है कि आप किताबों से पढ़ने के बाद रूसी क्रांति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और इस विषय पर आपकी इस तरह की पकड़ बन जाए कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब दे सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।